تو مسیح میں پیارے بھائیوں اور بہنوں، ہم پہنچ گئے ہیں ہمارے مسیح کے ورودھی کی کلاس نمبر 2، اس کا دوسرا بھاگ، کلاس نمبر 36. تو ہم مسیح کے ورودھی کے دوسرے بھاگ کی پڑھائی میں ہم جاری رکھیں گے ہماری پڑھائی. ہم نے پچھلی کلاس میں کیا دیکھا کہ مسیح ورودھی کوئی انسان نہیں ہے جیسے سب لوگ مانتے ہیں یا عیسائی مانتے ہیں، نہ ہی کوئی راجا ہے جو آنے والا ہے اور سارے سنسار پہ راجیہ کرے گا اور کنٹرول کر لے گا، بلکہ ہم نے پوتر شاستر کے دوارا یہ دیکھا کہ مسیح ورودھی تو ایک سنگٹھن ہے، اور وچن سے ہم نے یہ دیکھا یہ تو ایک ادھرم کا ایسا رہسیا ہے جو پریرتوں کے کام سے ہی کام کر رہا ہے، چل رہا ہے. پہلی صدی میں پریرت پولس بتا رہا ہے دوسرا تسلونکیہ 2:7-8 میں کہ وہ تو جو ادھرم کا رہسیا انہی کے زمانے سے کام کر رہا ہے اور پربھو یشو مسیح اپنے دوسرے آگمن سے اس کو ناش کریں گے. تو یہ بات پڑھ لو دوسرا تسلونکیہ 2:7-8 میں.
ادھرم کا بھید اب بھی کاریہ کرتا جاتا
ہے، ادھرم کا بھید اب بھی کاریہ کرتے جاتا ہے،
پر ابھی ایک روکنے والا ہے اور جب تک وہ دور نہ ہو جائے وہ روکے رہے گا، تب وہ ادھرمی پرکٹ ہوگا جسے پربھو یشو اپنے منہ کی پھونک سے مار ڈالے گا اور اپنے آگمن کے تیز سے ختم کرے گا.
تو دیکھو یہ مسیح ورودھی سنگٹھن کا جیون کاریہ 2000 سال سے چل رہا ہے. یہ کوئی انسان تو 2000 سال جیوت نہیں رہ سکتا ہے نا، یہ تو سمبھو نہیں ہے. تو ہم نے دیکھ لیا ہے کہ مسیح ورودھی کوئی ایک انسان نہیں ہے بلکہ ایک شیطان کا بنایا ہوا سنگٹھن ہے جو کیا کر رہا ہے، ستیہ کو ناش کر رہا ہے. کیسے؟ غلط شکشا سے، غلط وشواس سے، اور جو چیزیں غلط ہیں. اور وہ کیسے، کہاں پہ کرتا ہے یہ سب ستیہ کو ناش؟ کلیسیا میں، پرمیشور کے مندر میں، کلیسیا میں. کیسے کرتا ہے؟ کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ بڑے بڑے چمتکار اور چن دکھا کے، ہے نا، اچمبے والے کام دکھا کے. آپ دیکھ لو سب سے زیادہ اچمبے والے کام کون سے دھرم میں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ مسیح ورودھی سنگٹھن کلیسیا کے اندر کام کرتا ہے، کیونکہ ہم نے جو پچھلی کلاس میں ہم نے دیکھا ہے وہ گھنونی وستو کہاں بیٹھتی ہے، مندر میں کھڑی ہوتی ہے، اور وہ کیا بولتی ہے، پرمیشور کے جو عہدے ہیں وہ لیتی ہے، بولتی ہے میں پرمیشور ہوں سب. یہ تو یہ مسیح ورودھی سنگٹھن کو پرمیشور کے سنتوں پہ ادھیکار دیا گیا 1260 دنوں کے لیے، کیونکہ پرکاشت واقعہ کی کتاب میں جب ہم نے پچھلی بار دیکھا تھا 12 ادھیائے میں کہ وہ عورت بچہ پیدا ہوتے ہی 1260 دنوں کے لیے کیا ہوئی، جنگل میں بھاگ گئی، ہے نا. ابھی یہ کون ہے مسیح ورودھی سنگٹھن اور یہ کیسا ہے مسیح ورودھی سنگٹھن، یہ ہے آج کی ہماری پڑھائی. ٹھیک ہے، تو یہ 2000 سال سے زندہ ہے، لیکن کسی نے بھی اس کو، کوئی بھی اس کو ابھی تک پہچان نہیں سکا ہے اس سنگٹھن کو. کیوں نہیں پہچان سکا ہے؟ کیونکہ یہ کون کیا ہے، ایک رہسیہ، ایک ادھرم کا رہسیہ. تو آج اسی کو ہم پہچاننے کی کوشش کریں گے پرمیشور کے وچن سے. تو شروع کریں گے دانیل کی کتاب سے، دانیل 7:20-21 میں. दानियल 7:20-21।
फिर उसके सिर में से 10 सिंगों का भेद और जिस नए सिंह के निकलने से 3 सिंह गिर गए, अर्थात जिस सिंह की आंखें और बड़ा बोल बोलने वाला मुंह और सब अन्य सिंहों से अधिक भयंकर था, उसका भी भेद जानने की मुझे इच्छा हुई। फिर मैंने देखा था कि वह सिंह पवित्र लोगों के संग लड़ाई करके उन पर उस समय तक प्रबल भी हो गया।
पवित्र लोगों पर लड़ाई करता है, ये सिंह के साथ लड़ाई करता है। ये पवित्र लोग इंग्लिश में संत है, तो संत कौन है? संत लोग कौन होते हैं? यस, जो वाचा बांधते हैं। परमेश्वर का वचन बोलता है ना भजन संहिता 50:5, मेरे संतों को जिन्होंने कुर्बानी वाली वाचा बांधी है मेरे सामने क्या करो। तो ये जो सिंह था, ये इन संतों के साथ जो परमेश्वर के साथ वाचा बांध के प्रभु यीशु मसीह का पीछा करते थे, उनके साथ ये क्या करता था? झगड़ा करता था। ठीक है, तो ये शुरुआती विश्वासियों के साथ ऐसा हुआ जो प्रभु यीशु मसीह के सच्चे चेले थे, जो उसके कदमों पे चलते थे। अभी ये सिंह कौन है, ये हम पढ़ते हैं दानियल 7:7-8 में।
फिर उसके बाद मैंने स्वप्न में दृष्टि की और देखा कि एक चौथा जंतु है जो भयंकर और डरावना और बहुत सामर्थी है। उसके बड़े बड़े लोहे के दांत हैं, वह सब कुछ खा डालता है और चू चू करता है, और जो बच जाता है उसे पैरों से रोनता है। वह सब पहले जंतु से भिन्न है और उसके 10 सिंह है। मैं उन सिंगों को ध्यान से देख रहा था तो क्या देखा कि उनके बीच एक और छोटा सा सिंह निकला और उसके बल से उन पहले सिंगों में से 3 उखाड़े गए। फिर मैंने देखा कि इस सिंह में मनुष्य की सी आंखें और बड़ा बोल बोलने वाला मुंह भी है।
तो ये सिंह जो चौथा दरिंदा है, और जब ये आया तो ये 3 सिंगों को क्या कर दिया, इसने जड़ से उखाड़ दिया। तो इस सबका क्या मतलब है, ये तो हमने क्लास नंबर 8 में देखा था, वो पंचमा महान साम्राज्य जिसमें देखा था। ये चौथा दरिंदा या चौथा जंतु जो है वो है चौथा राज्य, और वो चौथा राज्य का नाम क्या था? रोमन राज्य। ठीक है, तो ये रोमन राज्य है जो सारे संसार पे राज्य करता था, ये है वो दरिंदा। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि इस दरिंदे के 10 सिंह थे, 10 सिंह होने के बाद एक और सिंह निकला, एक और सिंह ने क्या किया, 3 को जड़ से उखाड़ दिया। तो ये सिंह क्या है, ये सिंह थे रोमन राज्य का बंटवारा हुआ था, जैसे रोमन राज्य 1, लेकिन उसके आगे बंटवारे 10 राजा के अंदर, 10 राजा जो उस पर राज्य करते थे। तो ये तो पढ़ लो दानियल 7:24 वचन में।
उन 10 सिंहों का अर्थ यह है कि उस राज्य में से 10 राजा उठेंगे और उनके बाद उन पहलों से भिन्न एक और राजा उठेगा।
सो 10 सिंहों का मतलब है 10 राज्य और 10 राजे जो राज्य करेंगे। तो इसलिए रोमन साम्राज्य जो था उसको चलाने वाले कितने लोग, कितने राजे थे? 10 राजे एक नाम के अधीन, जैसे चर्च बोलते ना कलीसिया। अभी है तो कलीसिया, लेकिन मिशने जो है वो अलग अलग। ऐसे ही नाम तो राज्य रोमन राज्य, लेकिन उसके बंटवारे 10। अभी ये छोटा सिंह कौन सा था जो बाकी सिंहों से भिन्न था? ये छोटा सिंह भी एक राजा था जो बाकी राजाओं से क्या था, अलग था। ये अलग कैसे था ये अब हम देखेंगे। तो ये छोटा सिंह या एक और राज्य या राजा रोमन राज्य का जो दूसरों से अलग था, ये हम अब पढ़ेंगे। जब हम रोमन राज्य का इतिहास देखें तो हमें पता चलता है कि एक बहुत भिन्न तरह का राजा आया रोमन राज्य की हिस्ट्री में, वो था कलीसिया से, चर्च से, क्रिश्चियन चर्च से वो आया था वो राजा। तो उसके बारे में हम साफ साफ पढ़ते हैं। तो वो जब आया तो उसने ये बोला कि ये जो अरेंजमेंट है इसको प्रभु ने तैयार किया है और अथॉरिटी मिल रही है कलीसिया के इस बंदे को, जो प्रेरितों से जिसे बिशप बोलते थे, बिशप को, जो बिशप था एक राजा के तौर पे निकला क्रिश्चियन चर्च से और राजा बना रोमन राज्य का। तो ये पढ़ते हैं हम पहला तिमोथी 3:1 में, तो बिशप का काम क्या होता है ये पढ़ते हैं। तीन का एक, पहला तिमोथियस 3:1, तो ये वचन दिखा के उन्होंने बोला कि ये प्रभु ने अरेंजमेंट किया है कि जो बिशप होता है वो अच्छा काम ही सोचता है, तो ये परमेश्वर का अरेंजमेंट है, हमें बिशप की माननी चाहिए। तो ऐसे बहुत से बिशप थे छोटे छोटे झुंडों में जब शुरुआती कलीसिया शुरू हुई, जिनको हम एल्डर्स भी बोलते थे, जो सारी कलीसिया का वेलफेयर चाहते थे, भला चाहते थे। जो चेले थे वो सारे बिशप ही थे, क्योंकि उनके अंदर कलीसिया चलती थी, ग्रुप चलते थे। तो इस बिशप ने जो कलीसिया से ये निकला, इसने बोला कि ये परमेश्वर का अरेंजमेंट है। तो उन दिनों में क्या होता था कि अलग अलग शहरों से बिशप आते थे यात्रा करके, और चर्च के वेलफेयर के बारे में बात किया करते थे, हम कैसे आगे जाएं, कैसे वो करें। तो अलग अलग शहरों से के अलग अलग बिशप होते थे, लेकिन ये जो रोम का बिशप था ना, रोम का, ये थोड़ा अलग था। रोम क्या थी उस वक्त? अभी रोम राज्य था, तो राजधानी संसार की कौन सी होगी? रोम, ठीक है, रोमन राज्य मैं बोल रहा हूँ ना, तो रोमन राज्य में, तो रोमन राज्य ने सारे संसार पे राज्य किया, ठीक है। तो ये रोम की, रोम, ये जो रोम का बिशप था, ये तो राजधानी में था, सारे संसार की राजधानी में था, और ये बड़ा अलग था इसकी बातचीत में और इसके चाल चलन में। तो ये रोम के बिशप में के अंदर बदलाव कैसे आया? एक कॉन्स्टेंटाइन करके राजा था, जिसने क्या किया, मसीहियत को क्या कर लिया। पहले रोम जो थे ना, रोमन लोग, वो नहीं मानते थे क्रिश्चियन धर्म को, लेकिन ये कॉन्स्टेंटाइन राजा जो था, इसने मसीहियत को अपना लिया, क्रिश्चियन बन गया। और आज भी ये कॉन्स्टेंटाइन के बारे में अगर आप रोमन कैथोलिक से पूछो, तो उसे वो संत बोलते हैं, कॉन्स्टेंटाइन संत। तो जब ये कॉन्स्टेंटाइन ने मसीहियत को अपना लिया, तो ये रोम का बिशप बन गया, ठीक है, और इसको बहुत आदर मिलना शुरू हो गया, रोमन राज्य में इसकी पहचान हो गई। और ये रोम का जो बिशप था, ये जो कॉन्स्टेंटाइन, बाकी जब बिशप लोगों से मिलता था, तो बाकी बिशप लोग इसको थोड़ा और बड़ा ओहदा देते थे, क्योंकि ये कहाँ पे था, राजधानी में था, और थोड़ा इसका क्या बोलते हैं, स्टेटस जरा बाकी बिशपों से ऊंचा था। तो धीरे धीरे जब ऐसा होता गया, तो ये जो कॉन्स्टेंटाइन था, जो कैपिटल में रहता था, राजधानी में रहता था, रोम की में, तो सब बाकी बिशप इसको धीरे धीरे फादर बोलना शुरू कर दिए। बाकी बिशप इसको क्या बोलना शुरू कर दिए? फादर, जो लतीनी भाषा में शब्द पपा, पापा बोलते थे, पापा भी आज बोलते ना, बच्चे को बोलते पापा। इंग्लिश में ये शब्द धीरे धीरे आया पोप, पोप का मतलब होता है पापा, फादर। तो जब ये इसको ओहदा मिल गया रोम के बिशप को, तो कलीसिया में इसको थोड़ा और ऊंचा ओहदा महसूस करना शुरू कर दिया इसने, जो बिल्कुल पवित्र शास्त्र के खिलाफ था। वचन के अनुसार कलीसिया का सर कौन है? प्रभु यीशु मसीह। लेकिन जैसे जैसे ये ओहदे में बढ़ा, इसने ये कलीसिया का कंट्रोल अपने अधीन कर लिया, जो वचन के अनुसार नहीं था, जो वचन के विरुद्ध था। एफिसियों 1:22 में पढ़ लो। एफिसियों 1:22
और सब कुछ उसके पांवों तले कर दिया और उसे सब वस्त्रों पर शिरोमणि ठहरा कर कलीसिया को दे दिया।
तो परमेश्वर ने तो प्रभु यीशु मसीह को सिर्फ एक सर, ज्यादा सिर नहीं बनाए हैं। परमेश्वर ने रावण के जब तरह 10 सर नहीं बनाए हैं, एक ही सर है और वो है प्रभु यीशु मसीह। और फिर प्रभु यीशु मसीह बोलते मत्ती 23:8-9 में क्या बोलते हैं, किसी को अपना धरती पे फादर नहीं बोलना, तुम्हारा पिता कहाँ है? स्वर्ग में है। तो ये बड़ी एक खास बात थी कि किसी को फादर नहीं बोलना धरती पे, वो तो स्वर्ग में है। लेकिन ये फादर यानी पोप का टाइटल जो था, ये ओहदा था, बिशप के रोम को मिलना शुरू हो गया। और वो शक्ति में, प्रभाव में बढ़ने लगा, धार्मिक बातों ही में ही नहीं बल्कि सामाजिक बातों में भी, राजनीति बातों में भी। राजनीति वाले भी जो राजा थे उसको क्या करना शुरू कर दिए, उसको पवित्रता देना शुरू कर दिए, उसको क्या करना शुरू कर दिए, बहुत आदर देना शुरू कर दिए। अरे ये तो परमेश्वर के बनाया द्वारा बनाया गया संगठन है। अभी थोड़े दिन पहले वो जो न्यूज आई थी ना पोप की, तो उसमें न्यूज में मैं देख रहा था एक दिन, बोलते जिस दिन पोप ने ये रेजलाइन का वो दिया, उस दिन पता क्या हुआ, बिजली आकाश से बिजली घड़की ऐसे बिजली दिखा रहे थे। तो ऐसे ये राजनीतिक बातों में भी और धार्मिक बातों में भी शक्ति और प्रभाव में क्या हो गया, बढ़ना शुरू हो गया। तो इसलिए इसको बोलते ये छोटा सिंह, जो बाकी सिंहों से क्या था, अलग था, बाकी जो रोमन के राजे थे उनसे अलग था। क्यों? क्योंकि बाकी राजा तो सिर्फ राजनीतिक बातों में, सामाजिक बातों पे राज्य करते थे, लेकिन ये दोनों में ही करना शुरू कर दिया। ठीक है, इस तरह से जन्म हुआ पेपेसी का, पोप वाले संगठन का। ठीक है, तो जैसे ये आया, इसके सामने जो तीन सिंह थे उनको क्या कर दिया इसने, उखाड़ के फेंक दिया। तो मतलब के कहने का मतलब, ये तीन राज्यों, तीन सिंह मतलब तीन राज्यों का अंत कर दिया, जैसे ही पोप पेपेसी संगठन का जो जन्म हुआ। तो इसने तीन राज्यों को अपने मर्ज कर लिया, एक में मिला लिया, एक में। तो ये सिंह को थोड़ी देर बाद हम देखेंगे, लेकिन हम देखते हैं कि ये पोप की हिस्ट्री में, जो एक पोप का नाम था पोप लियो ने क्या किया, एक एग्रीमेंट बनाया फ्रांस के राजा पेपिन के साथ, और पेपिन के साथ एग्रीमेंट करके अपने जो क्या बोलते हैं, फ्रांस के राजे का पेपिन का उसका बेटा था चार्ली मैगिन, मिलके उसके साथ इसने बनाया, एक नाम दिया रोमन राज्य को, होली रोमन एम्पायर, पवित्र चार्ली मैगिन। हाँ, पवित्र चार्ली मैगिन, मैगने, चार्ली मैगने। तो इसके साथ मिलके पोप लियो ने एग्रीमेंट इनके साथ करके नया जो नाम दिया इस राज्य को, रोमन राज्य को, ये दे दिया पवित्र रोमन राज्य। पवित्र मीन धार्मिक और रोमन राज्य मीन पॉलिटिक्स यानी राजनीति। तो ये पवित्र क्लेम इन्होंने कैसे लिया, ये 799 में ये शुरू हो गया था, मतलब पवित्र रोमन राज्य। रोमन राज्य तो 539 से शुरू हुआ, लेकिन धीरे धीरे जब ये बदला, टाइम लगा ना उसको बदलने के लिए, 799 में ये पवित्र रोमन राज्य बन गया। तो ये क्लेम करना शुरू कर दिए कि ये पवित्र रोमन राज्य तो परमेश्वर की अनुमति से है और परमेश्वर ने इसका अरेंजमेंट बनाया है। तो इसलिए ये जो पोप था ये राज्य शुरू करना शुरू कर दिया, मतलब कि फुल फ्लेज राज्य, सिंहासन पे बैठ के पूरी तरीके से राज्य करना शुरू कर दिया। तो इस तरीके से हम देखते हैं ये पेपेसी जो थी ये तो प्रभु यीशु मसीह के राज्य का बहरूपिया था। प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन भी नहीं हुआ है और ये लोग बोलना शुरू कर दिए कि हमने परमेश्वर के राज्य शुरू कर दिया है। तो ये एक तरह का बहरूपिया था। ये है मसीह विरोधी संगठन जिसने डुप्लीकेट बहरूपिया प्रभु यीशु मसीह के राज्य का स्थापित किया। तो अभी हमें ये गलती नहीं करनी है कि रोमन कैथोलिक वालों को बोलना है तुम लोग, जैसे कोई रोमन कैथोलिक कलीसिया में जाता तो उसे बोलना है अरे तुम एंटी क्राइस्ट हो। नहीं, एंटी क्राइस्ट क्या है, एक संगठन, उनका जो संगठन है ना रोमन कैथोलिक संगठन जो है वो है मसीह विरोधी, जो मसीह का बहरूपिया है, जो मसीह के द्वारा नहीं बनाया गया है, ठीक है। तो वो मजबूरी से उसका हिस्सा है, ठीक है। मसीह विरोधी संगठन का क्या है, वो हिस्सा है। तो अभी ये तो हमने देख लिया कि ये जो पोप का संगठन है ये मसीह विरोधी है। ये बात आगे भी पढ़ते हैं दानियल 7:25 में कि वो बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है परमेश्वर के खिलाफ, संतों को मारता है। पढ़ो जरा दानियल 7:25 में। बस बस, तो परम प्रधान के अगेंस्ट बड़ी बड़ी बातें करेगा, संतों को मारेगा, समय और व्यवस्था को क्या करेगा। तो एक एक करके हम देखेंगे। परम प्रधान यानी पिता परमेश्वर के खिलाफ बहुत बड़ी बड़ी बातें बोलेगा। तो ये पोप का संगठन ने बहुत बड़े बड़े शब्द इस्तेमाल किए परमेश्वर के खिलाफ। क्या थे वो शब्द, ये कैसे हुआ, ऐसे हुआ पोप ने, पोप के संगठन ने वो बड़े बड़े ओहदे जो पिता परमेश्वर या प्रभु यीशु मसीह के लिए थे वो इन्होंने क्या कर लिए, अपने लिए इस्तेमाल करने शुरू कर दिए, जो बिल्कुल परमेश्वर के गवाही के उल्ट था, परमेश्वर के वचन के उल्ट था। परमेश्वर जैसा तो कोई भी नहीं हो सकता है। प्रभु यीशु मसीह ने भी ये ओहदा लेने से इनकार किया। जब प्रभु यीशु मसीह को आके बोला अरे प्रभु तुम तो बहुत अच्छे हो, प्रभु ने क्या बोला, अच्छा मुझे मत बोलो, एक ही है अच्छा, पिता परमेश्वर। तो ये जो पोप के संगठन ने 62 ऐसे ओहदे थे जो शर्मिंदगी है उनके लिए, 62 ऐसे टाइटल्स, ऐसे ओहदे जो पिता परमेश्वर के लिए इस्तेमाल होने चाहिए अपने लिए इस्तेमाल करने शुरू कर दिए। उदाहरण के तौर पे एक 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 मैं बताता हूं, उसका नाम है मोस्ट डिवाइन ऑफ ऑल हेड्स। मोस्ट डिवाइन ऑफ ऑल हेड्स यानी सारे सरों से अलग। ये किसके लिए इस्तेमाल होना चाहिए, प्रभु यीशु मसीह तथा परमेश्वर के लिए, लेकिन पोप ने अपने लिए इस्तेमाल। फिर एक और अदा, होली फादर ऑफ फादर्स, होली फादर ऑफ फादर्स दूसरा। तीसरा ओवरसीयर ऑफ द क्रिश्चियन रिलीजन, यानी हेड हेड ऑफ क्रिश्चियन रिलीजन, क्राइस्ट बाय अंक्शन, मोसेस इन अथॉरिटी, मेलिकिसेदेक इन ऑर्डर, हेयर्स ऑफ द अपोस्टल पीटर इन पावर। मतलब ऐसे 62 ओहदे जो विकार ऑफ क्राइस्ट, विकार ऑफ क्राइस्ट का क्या मतलब है, मसीह का रिप्रेजेंटेटिव, मसीह की जगह, तो ये इन्होंने इस्तेमाल, ओवरसीयर ऑफ द क्रिश्चियन रिलीजन। तो ऐसे 62 ओहदे जो सिर्फ पिता परमेश्वर या उसके पुत्र के लिए इस्तेमाल होने चाहिए, इन्होंने क्या करने कर दिए शुरू, अपने लिए इस्तेमाल करने शुरू कर दिए। जो था बड़े बड़े शब्द बोलना किसके किसके खिलाफ, परमेश्वर के खिलाफ, ठीक है। और दूसरी बात हमने 7:25 में क्या पढ़ी, वो परमेश्वर के संतों के साथ क्या करता था। तो इसका मतलब जब ये पोप संगठन पूरी तरह से राज्य में आ गया ना, तो इसने पता क्या करना शुरू कर दिया, जो वफादार ईसाई थे, जो सत्य पे चलने वाले ईसाई थे, जो बाइबल पे विश्वास रखने वाले ईसाई थे, जो प्रभु यीशु मसीह का पीछा करने वाले ईसाई थे, उनको क्या करना शुरू कर दिया, इसने मारना शुरू कर दिया। ये थोड़ी देर में हम पढ़ते हैं। तीसरी चीज इसने क्या की, समय और व्यवस्था को बदलने की कोशिश की, है ना। तो तीसरी चीज थी समय और व्यवस्था, समय और व्यवस्था को बदलने की क्या कोशिश की, ये हम पढ़ते हैं। पहली बात करते हैं व्यवस्था। व्यवस्था क्या है, व्यवस्था क्या बोलते हैं व्यवस्था को, नहीं व्यवस्था है 10 हुक्म, 10 नियम। तो परमेश्वर के वचन में जो असली दूसरी जो हुक्म था वो ये था कि मूर्ति पूजा नहीं करनी है, है ना, मूर्ति पूजा नहीं करनी है। तो इन्होंने पता क्या किया, इसको हटाया अपनी बाइबल में से, दूसरी कमांडमेंट को क्या कर दिया, हटा दिया। बाकी कितनी रह गई, 9, है ना, लेकिन फिर भी इनकी बाइबल में 10 है, वो कैसे बताता हूं। दूसरी कमांडमेंट को हटाया और जो 9वीं कमांडमेंट थी उसको 2 भागों में बांट के 10 बना दिया, बड़ी चालाकी से। वो कौन सी थी, कूच 20:17 में पढ़ लो, निर्गमन 20:17। ये एक ही कमांडमेंट थी लेकिन इन्होंने इसको 2 में बांट दिया।
निर्गमन 17,
हाँ 20:17,
किसी के घर का लालच ना करना, ना तो किसी की स्त्री का लालच करना, और ना किसी के दास दासी या बैल गधे का, ना किसी की वस्तु का लालच करना।
तो इन्होंने पता क्या बना दिया, 9वां जो हुक्म बना दिया ये कि तू किसी अपने पड़ोसी की वाइफ की लालसा मत करना, ये 9वां बना दिया। बाकी बची जो थी वो 10वीं बना दी। तो इस तरीके से 10 बना ली पूरी। तो इसका मतलब क्या, इन्होंने व्यवस्था को बदलने की क्या की, कोशिश की, और समय को भी बदलने की कोशिश की। 20:4-5 भी पढ़ लो, ये इनकी रोमन कैथोलिक की बाइबल में ना नहीं है ये वाली बात।
तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना, ना किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में या पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में है। तू उनको दंडवत ना करना, ना उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर पिता जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ, और जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटों पोतों पर पोतों को भी पितरों का दंड दिया करता हूँ।
तो ये रोमन कैथोलिक चर्च में फॉलो होता है, ठीक है। तो इसलिए इन्होंने ये दूसरी कमांडमेंट हटा दी, दूसरा हुक्म हटाया और 10वें हुक्म को 9 और 10 बना दिया। तो व्यवस्था बदल दी। फिर आगे क्या पढ़ते हैं हमने, इसने समय को भी बदलने की कोशिश की। समय को कैसे बदलने की कोशिश की वो हम पढ़ते हैं। पहले प्रकाशित वाक्य 20:5, उसमें यह है कि प्रभु यीशु मसीह सबका न्याय करेगा 1000 साल के राज्य में। पढ़ो जरा,
जब तक ये 1000 वर्ष पूरे ना हुए तब तक शेष मरे हुए ना जिए थे, ये तो पहला मृत्यु का स्थान है।
तो ये वो बड़े बात की टाइम की बात हो रही है जो परमेश्वर ने सारी मनुष्य जाति के लिए रखा है, 1000 साल का समय जिसे गोल्डन एज बोलते हैं हम, जो जिसमें सब सुधार किया जाएगा, प्रभु यीशु मसीह सुधार करेगा, है ना, जो जो परमेश्वर के राज्य की स्थापति होगी। तेरा राज्य है, तेरी मर्जी जिस तरह आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो, जब ये चीज होगी, है ना, उस समय में। लेकिन इन्होंने क्या किया, जब 799 में प्रकाशित वाक्य 20:4-6 में भी हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह 1000 साल का राज्य करने आएगा, हम सब उसके साथ राज्य करेंगे, है ना, सही ना। लेकिन इन्होंने जब ये स्थापित किया 799 में पवित्र रोमन राज्य, तो इन्होंने ये क्लेम करना शुरू कर दिया कि जिस 1000 साल के राज्य का जिक्र बाइबल में हुआ है वो तो परमेश्वर ने हमें दिया है। तो 799 से लेके 1799 तक ये पोप के संगठन का मानना था कि ये है मसीह के राज्य का शुरुआत, मतलब मसीह का राज्य चल रहा है, ये 1000 साल का राज्य। तो इन्होंने इस समय में ये पूरा क्लेम करके प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन से पहले ही ये सब करना शुरू कर दिया। तो ये क्या बदला इन्होंने, समय, जो समय परमेश्वर ने ठहराया था उसको बदलने की क्या कर दी, कोशिश कर दी। ऐसा हुआ 799 से लेके 1799 तक। लेकिन असली टाइम तो वो है जब प्रभु यीशु मसीह पूरी महिमा में अपनी कलीसिया के साथ क्या करेगा, आएगा। तो जब ये इन्होंने समय को बदलने की कोशिश की, ठीक है, तो इस समय क्या हुआ कि इन्होंने 799 से लेके 1799 तक पूरी अथॉरिटी की, पूरा अधिकार किया सब चीजों पे, धार्मिक पे भी और सामाजिक राजनीति पे भी। तो ये बोल के बोलते थे कि प्रभु का 1000 साल का राज्य का अधिकार तो पोप को दिया गया है। तो इसलिए हम पहचानते हैं कि ये मसीह विरोधी संगठन जो कितना समय दिया गया इसको, 1260, कितना दिन, 1260 दिनों का मतलब क्या हुआ, 1260 साल। लेकिन मैंने आपको अभी ये पहले बोला था ना कि रोमन राज्य कब शुरू हुआ था, 539 में रोमन राज्य शुरू हुआ। पवित्र रोमन, उस रोमन राज्य का रूप बदला कब, 799 से। तो 539 से लेके 1260 आप जोड़ लो, 539 में तो कितना आता है बताओ, 539, एक काम करो आप, 1799 से 1260 माइनस कर दो तो हमें पता चल जाएगा कि पोप की शुरुआत, वो पेपेसी का शुरुआत कब से है। तो ये पूरी तरह से मैच करती है उस डेट के साथ जब ये पोप का संगठन स्थापित हुआ था 539 में। बाद में इसने एग्रीमेंट किया ना राजा, फ्रांस के राजा पेपिन के साथ और चार मैगलिन के साथ, जब इन्होंने एस्टेब्लिश किया पवित्र रोमन राज्य। लेकिन ये पोप को 539 में लेटर मिली थी रोम के बिशप से, सॉरी रोम के बिशप को लेटर मिली थी राजा जस्टिनियन ने लेटर दी थी, पत्र दिया था रोम के बिशप को 539 में, जिसको उसने बनाया, उसको ओहदा दिया था पॉन्टिफेक्स मैक्सिमस, ये ओहदा दिया था रोम के बिशप को पॉन्टिफस मैक्सिमस। तो इसका मतलब था, इसका मतलब होता है पॉन्टिफेक्स मैक्सिमस का मतलब होता है धार्मिक बातों का हेड। जो राजा जस्टिनियन था ना, उसने अपने राज्य में पता क्या किया 539 में, बोला ठीक है मैं धार्मिक बातें अलग करूंगा और राजनीतिक बातें क्या करूंगा अलग। तो उसने एक पॉन्टिफेक्स मैक्सिमस करके एक ओहदा जो एक पत्र में किसको भेज दिया, रोम के बिशप को भेज दिया, जिसमें बोला कि तू रोमन राज्य की सारी धार्मिक बातों का हेड है। तो ये था वो छोटा सिंह जिसने तीन सिंहों को क्या कर लिया, खा लिया। तो ये ऐसे हुआ। तो मसीह विरोधी संगठन जिसने, जो मसीह का बहरूपिया था, 539 से लेके 1799 तक, अगर 539 से 1799 देखो तो कितने साल बनते हैं, 1260 दिन। तो एग्जैक्टली मैच करता है जो प्रकाशित वाक्य में लिखा है, 1260 दिनों तक वो क्या हुई, भाग गई। मतलब ये मसीह विरोधी संगठन को अधिकार दिया गया 1260 दिनों तक, पावर दी गई। अभी इस मसीह विरोधी संगठन को पहचानने का नंबर दिया है बाइबल में, क्या है वो नंबर, 666। प्रकाशित वाक्य 13:18 में हम जानते हैं ये बात, बहुत बार पढ़ी भी होगी। तो 666 का मतलब क्या है, है ना, 666। अगर आप पोप के सर पे एक ताज होता है ना, है ना, उसमें पता क्या लिखा होता है, विकारियस फिली डी, ये है स्पेलिंग, वी आई सी ए आर आई यू एस, विकारियस। दूसरा शब्द है फिली, तीसरा शब्द है डी। इसका मतलब क्या होता है, विकार ऑफ द सन ऑफ गॉड, यानी मसीह का क्या बोल सकते हैं, रिप्रेजेंटेटिव, नुमाइंदा, ठीक है। तो ये जो टाइटल है, ये जो ओहदा है, ये पता किसके है माथे पे, वो जो ताज है ना उसके सर पे, पोप पे, उस पे ये लिखा होता है। तो वो रोमन, अगर इसको हम रोमन भाषा में कन्वर्ट करें ना, इन शब्दों को, तीनों को, आपको रोमन न्यूमरल्स पता है ना, आई जैसा वन, दो आई दो, तीन आई तीन, और एक आई और वी चार, ए वी पांच, है ना। तो अगर उसको ऐसे बदले हम रोमन न्यूमरल्स में, तो ऐसे बनता है विकारियस का, वी का 5, आई का 1, सी का मतलब होता है 100, जिसका कुछ नहीं उसके 0 लगानी है, जैसे ए नहीं होता है उसमें, आर नहीं होता है, तो उसको 0 लगाओ, आई 1, यू लैटिन भाषा में यू वी की तरह होता है, यह वे जैसे था ना, तो यू का मतलब 5, एस का मतलब 0, तो ये टोटल बनता है विकारियस का 112। इसी तरीके से फिली, ये देख लो बाद में आप नोट कर लेना, फिली एफ कोई शब्द नहीं होता है, 0, एक का मतलब, आई का मतलब 1, एल का मतलब 50, एक का मतलब 1, आई का मतलब आई, तो ये 53, डी का मतलब होता है 500, ई का मतलब होता है 0, और आई का मतलब 553 112, बन जाएगा 666। तो ये जो एंटी क्राइस्ट मसीह विरोधी संगठन का टाइटल पोप ना जानते हुए अपने माथे पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये है मसीह विरोधी संगठन, जो बहुत चलाक तरीके से मसीह का बहरूपिया राज्य स्थापित किया और बहरूपिये के तौर पे काम किया। तो ये बात पौलुस देख लो, दूसरा थिस्सलुनीकियों 2:3-4 में बोल रहा है, दूसरा थिस्सलुनीकियों 2:3-4,
ये यह हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को अच्छा लगता है और भाता भी है, जो ये चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो, वह सत्य को भली भांति पहचान ले।
आगे
क्योंकि परमेश्वर एक
नहीं दूसरा किसम लोग किया तमोथी नहीं
किसी रीति से किसी के धोखे में ना आना, क्योंकि वह दिन ना आएगा जब तक धर्म का त्याग ना हो।
धर्म का त्याग होना जरूरी है। धर्म का त्याग मतलब अति पवित्र विश्वास गिरेगा। अति पवित्र विश्वास परमेश्वर के वचन की जो शुद्ध शिक्षा है वो गिर जाएगी। बाइबल की शिक्षा खो जाएगी। कैसे? गलतियों से, गलत शिक्षा से जो असच्चाई है। तो ऐसा ही हुआ। पहली गलत शिक्षा जो जो आम तौर पे विश्वास है अन्य जातियों का, वो क्या है कि आत्मा मरती नहीं है। ये हिंदू भी यही बोलते हैं, है ना, मुसलमान भी यही बोलते हैं, सिख भी यही बोलते हैं, सब सब। तो ये गलत शिक्षा कलीसिया में कैसे एंटर हुई? ये रोमन कैथलिक से, रोमन कैथलिक लेके आया उसको कि आत्मा मरती नहीं है, ये होता है वो होता है। अगली गलत शिक्षा थी नरक, सताए जाने वाली जगह। तीसरी गलत शिक्षा थी पुर्गेटरी। पुर्गेटरी का मतलब क्या है? अभी थोड़े दिन पहले ही इसका सबूत मिला मुझे। हमारी मामी है वो रोमन कैथोलिक चर्च को बिलोंग करती है, तो बोलती हमारा क्या होगा? मैंने बोला आपका भी अच्छा ही होगा। तो बोलती हम ना तो स्वर्ग के जाने के लायक हैं ना नरक जाने के भी लायक, इतने भी बुरे नहीं हैं, तो हम तो पुर्गेटरी में जाएंगे, उन सेंटर वाली जगह है। हिंदी में पता नहीं इसको क्या बोला उसने। मैंने बोला सॉरी, ये बाइबल में ऐसी कोई जगह नहीं है, या तो स्वर्ग है या नरक है। ठीक है, पुर्गेटरी नाम की जगह इन्होंने रोमन कैथोलिक ने बनाई कि जो लोग ना स्वर्ग जाने के लायक है, जब नरक लाने के जाने के लायक है, उनको पुर्गेटरी में रखा जाता है, तैयार किया जाता है, ताकि या तो वो स्वर्ग में जाए या फिर ऐसी कोई जगह है बाइबल में आपने देखी कहीं नहीं है। चौथी गलत शिक्षा क्या लेके आई? कन्फेशन ऑफ सिन। कन्फेशन करनी है हमें अपने प्रीस्ट के सामने जाके, अरे बिशप के साथ सामने जाके कन्फेशन करनी है, नहीं तो हमारे पाप नहीं है माफ होंगे। लेकिन पाप माफ करने का बड़ा सिंपल तरीका है क्या? प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करो और तुम्हारे पाप क्या हो जाएंगे। तो ये क्या है? गलत शिक्षा है ना। ये जो बार बार प्रभु यीशु मसीह का बलिदान, रिपीटेड सेक्रीफाइस ऑफ जीसस इन मास, बार बार बलिदान, वो जो ब्रेड एंड वाइन वाला सिस्टम जो है, तो ये सब फ्राइडे को मीट नहीं खाना है, उस दिन प्रभु यीशु मसीह को सूली पे चढ़ाया है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना देनी, बोलना ये चर्च है, संतों के नाम पे चर्च रख देना, ये सब गलत शिक्षा थी। और संतों को प्रार्थना करनी, जिन्होंने रोमन कैथोलिक कलीसिया को स्थापित करने के लिए झगड़े किए, वो गलत है। अगली गलत शिक्षा क्या थी? ट्रिनिटी। वचन के अनुसार तो एक ही पिता परमेश्वर है सच्चा, लेकिन ये तीन परमेश्वर बना दिए इन्होंने, मतलब के कंफ्यूज कर दिया। प्योर सच्चाई, बाइबल की शुद्ध सच्चाई को क्या कर दिया? गलतियों से भर दिया, गलत शिक्षा से भर दिया। तो ऐसे गिनते जाओ तो आप गिनते ही जाओगे गलत शिक्षाओं को। तो ये बहुत सारी गलतियां, जो गलत शिक्षा थी, ये क्या थी? प्रभु यीशु मसीह ने इसको मत्ती 13 में बोला है जंगली बीज। ये जंगली बीज बोने वाला कौन था? शैतान। उसने वो जो अब उसके दास बोलते हैं, प्रभु तुमने तो अच्छा बीज बोया था, ये जंगली बूटी कहाँ से पैदा हो गई? तो वो किसने बीजी? दुश्मन ने। दुश्मन कौन था? शैतान। तो ये मसीह विरोधी संगठन जो है, जो गलत शिक्षा और झूठ के आधार पे स्थापित हुआ, ये तो परमेश्वर ने नहीं स्थापित किया, ये तो जंगली बीज से बना है। और जंगली बीज किसने बोया? शैतान ने, है ना, शैतान ने ही बोया ना। अभी ये मसीह विरोधी संगठन परमेश्वर बन गया, यही तो हमने पढ़ा था ना शुरुआत, परमेश्वर बन गया, गॉड बन गया, और परमेश्वर के मंदिर में इसने बैठना शुरू कर दिया और अपने आप को क्या दिखाया? मैं परमेश्वर हूं। यही तो पोप आज कर रहा है ना, यही तो पोप ने स्थापित कर दिया। तो ये तो प्रभु यीशु मसीह ने बहुत बड़ी चेतावनी दी है। पढ़ लो मत्ती 24 का 15 में,
इसलिए जब तुम उस उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को जिसकी चर्चा डैनियल रिसर्चर द्वारा की हुई थी कोई स्थान में खड़ी हुई देखो जो पड़े हुए समझे
देखो जो पड़े हुए समझ ले वो घृणित वस्तु जिसके बारे में डैनियल ने बोला है जब पवित्र स्थान में खड़ी देखो पवित्र स्थान कौन है कलीसिया तो वो उसे समझ ले तो प्रभु यीशु मसीह इसके बारे में और चेतावनी दे रहे हैं यूहन्ना 5:43 में बोल रहे हैं मैं अपने पिता के नाम पे आया हूँ तुम मुझे स्वीकार नहीं कर रहे हो अगर कोई और अपने नाम पे आए तो तुम उसे स्वीकार कर लोगे तो मसीह विरोधी संगठन जो प्रभु यीशु मसीह का नाम इस्तेमाल करके अपने आप को क्राइस्ट दिखा के कलीसिया का हेड दिखा के आ रहे हैं ज्यादातर दुनिया उसी पे विश्वास बोल कर रही है ठीक है जिसमें ना तो प्रभु यीशु मसीह हेड है और ना ही वो सच्ची कलीसिया है ठीक है 43
मैं अपने पिता के नाम से आया हूँ और तुम मुझे ग्रहण नहीं करते यदि अन्य कोई अपने ही नाम से आए तो उसे ग्रहण कर लोगे
देखो ग्रहण कर लोगे तो इस तरीके से ये अपने नाम पे आता है और ग्रहण करते हैं लोग इसको तो हमने एक बात छोड़ी थी ना बीच में वो जो दूसरा पॉइंट था ना कि वो परमेश्वर के संतों के साथ क्या करता था मतलब कि उनको नाश करता था लड़ाई करता था इसका मतलब क्या था ये उस समय की बात हो रही है जिसको हिस्ट्री में डार्क एजेस बोला गया है अंधेरे युग इसलिए बोला गया क्योंकि उस वक्त ये पोप राज्य करता था और पोप ने अपने राज्य में 5 करोड़ लोगों को मारा है पोप संगठन ने 5 करोड़ लोग 1300 साल तक ये 1260 साल का समय जो बोल रहा हूँ ना मैं 1300 साल के समय में इसको डार्क एजेस बोलते हैं हिस्ट्री में तो 5 करोड़ लोग जिसमें कईयों का इन्होंने न्याय किया कुछ कलीसिया के लोग जो बाइबल पकड़ के चलते थे सच्चाई पे चलते थे तो पता कैसे इनको देते थे मृत्यु कैसे देते थे उनको ये पता क्या क्लेम करते थे कि परमेश्वर ने हमें अधिकार दे दिया न्याय करने का अब हम न्याय करेंगे तो न्याय पता क्या करने थे जलने के लिए छोड़ देना या फिर एक वो चाकुओं वाला ऐसा होता था ना नीचे चाकू जो ऊपर से ऐसे नीचे आते थे उसके उस पर लटका देते थे चाकू बजते रहते थे और आदमी मरता था ये एक तरीका दो तरीके हो गए जलने के लिए और ये तीसरा कानों में वो डाल देना तेजाब वगैरह डाल देना या आँखों में तेजाब डाल देना या फिर वो ब्लेड आरे में डाल देना या फिर आँखें निकाल देनी वो सीखें डाल के या फिर वो जो एक ऐसी भट्टी होती थी उसमें सीखों में जैसे कबाब नहीं हम देखते हैं चिकन को डाल देते हैं ऐसे डाले रखते थे या फिर इनका तरीका होता था कि पोटाश देखिए आजकल आपने वो जो जब जब ये लोग प्रभात फेरी वगैरह निकालते हैं ना जब हाँ हाँ पोटाश तो उसके मुंह में डाल के उसको ब्लास्ट करवा देते थे या फिर भूख से मरते रहो या फिर हवा भरते थे आपने पंप से ताकि आप फूल के क्या हो जाओ फट जाओ फिर औरतों को बालों से लटका देते थे ठीक है मरने तक लटकती रहे ठीक है उसमें क्या होता था कि उन्होंने एक मरियम की मूर्ति बना रखी है और उसको अंधा कर रखा है मतलब वो न्याय वाला जो आजकल हम उसमें भी देखते हैं ठीक है तो जो ईसाइयों को जो बाइबल पे विश्वास करने वाले थे जो इसको स्वीकार नहीं करते थे उनको ये मृत्यु के घाट चढ़ा देते थे फिर क्या करते थे इतना टॉर्चर करते थे एक इंसान को अगर वो टॉर्चर करते करते बेहोश हो जाए उसको डॉक्टर से फिर ठीक करवाना ताकि फिर से ऐसा करें तो ये सब इन्होंने किया 5 करोड़ लोगों को जिसमें कोई लोग चोर या गलत काम करने वाले या कलीसिया सब ऐसे 5 करोड़ लोगों को इन्होंने मसीह के नाम से घात किया तो ये सब परमेश्वर के नाम पे किया गया हाँ तो ये मसीह के नाम पे किया गया और प्रभु यीशु मसीह के नाम परमेश्वर के नाम पे किया गया तो अभी जो हाँ 1300 साल डार्क एजेस, पता नहीं मे बी। तो फिर अभी थोड़ी देर 1799 के बाद ना पोप जॉन पोल टू था, उसने जो भी मर गया उसने ये सब घटनाओं के लिए माफ़ी मांगी है रिटर्न में, कि मैं माफ़ी मांगता हूँ कि ये जो सब कुछ नाम रोमन कैथोलिक कलीसिया में हुआ है। पोप जॉन पोल टू, उसने इन सारी जो काम किए इन्होंने इसकी माफ़ी मांगी थी। और प्रकाशित वाक्य 17:6 में देख लो, जब योहन्ना ने ये दृश्य देखा तो वो क्या हो गया। प्रकाशित वाक्य 17:6 नहीं नहीं, योहन्ना तो मर गया था ना, योहन्ना तो 99 ईस्वी में मर गया था, लेकिन प्रकाशित वाक्य तो उसी ने लिखा था ना।
मैंने उस स्त्री को पवित्र लोगों का लहू और यीशु को गवाहों का लहू पीने से मतवाली देखा, उसे देखकर मैं चकित हो गया,
हैरान हो गया। अरे तो ये योहन्ना जब देखा ये सब कुछ, तो उसको तो मतलब के सोच के ही इतनी हैरानी हुई कि ये सब होने वाला है और ये सब प्रभु के नाम पे किया जाएगा। ठीक है, तो दानियल भी यही 7:28 में पढ़ लो, उसने भी यही चीज़ देखी ना, 7:28।
बात का वर्णन मैं अब कर चुका, परंतु मुझ दानियल के मन में बड़ी घबराहट बनी रही और मैं भयभीत हो गया और
देखो
बात को मैं अपने मन में रखे था।
बोलता है बहुत सोच के मैं इतना घबरा गया, मेरा चेहरा पीला पड़ गया, इंग्लिश में माय फेस टर्न्ड पेल, पीला पड़ गया मेरा चेहरा। और 8:27 में देखो बोलता है मैं बीमार हो गया ये सब सोच के। ये दानियल जो पुराने नियम में ये सब बोला वो हैरान हो गया ये सब होने वाला है। ये देखो
तब मुझे दानियल को बल जाता रहा और मैं कुछ दिन तक बीमार पड़ा रहा।
देखो
तब मैं उठकर राजा का कामकाज भी करने लगा।
तो देखो बस तो प्यारे भाइयों और बहनों, ये तो सिर्फ आधी स्टोरी है मसीह विरोधी संगठन की, अभी दूसरा हिस्सा तो आपको बताना बाकी है। ये तो मसीह विरोधी संगठन का एक मोहरा हुआ, अभी दूसरा मोहरा तो बाकी है, क्योंकि मसीह विरोधी संगठन खाली रोमन कैथोलिक कलीसिया ही नहीं है, उसकी बेटियां भी हैं, वो जो हम पढ़ेंगे उस वैश्या की बेटियां हैं जो खुद वैश्याएं हैं। तो ये तो अगले भाग्य में हम करेंगे, तब तक परमेश्वर आप सबको आशीष दे, आमीन।